पृष्ठ संख्या 293 अध्याय 18। अध्याय का शीर्षक है धर्म में प्रतीकवाद या सिंबोलिज्म। अब शीर्षक है विषय प्रवेश। बहुधा यह देखा जाता है कि किसी वस्तु को समझने के लिए हम चिन्हों या प्रतीकों का उपयोग करते हैं। उन्हीं चिन्हों द्वारा हम निर्दिष्ट वस्तु का अर्थ समझते हैं। जैसे गणित और तर्कशास्त्र में विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं और उनसे एक विशिष्ट अर्थ बोध होता है। यही चिन्ह प्रतीक का रूप भी ग्रहण करते हैं। स्टेविंग के शब्दों में एक शब्द विशिष्ट चिन्ह के रूप में प्रतीक कहलाता है। प्रतीक की विशेषता है कि उससे हम प्रतीक का ज्ञान प्राप्त करते हैं। चिन्ह केवल संकेत मात्र है। जैसे तिरंगा झंडा प्रतीक है जो देश के गौरव और इतिहास को प्रकट करता है। गणित के धन और ऋण के चिन्ह केवल संकेत करते हैं। इसमें किसी वस्तु विशेष का ज्ञान नहीं होता। यह एक सामान्य चिन्ह है। प्रतीक का उपयोग कला और इतिहास में देखा जाता है, परंतु धर्म में प्रतीक का विशेष रूप से महत्व है। धार्मिक अनुभूतियाँ अतींद्रिय होती हैं। उनको समझने के लिए सादृश्य अनुमान या एनालॉजी का प्रयोग करते हैं, परंतु उससे भी धार्मिक विषय पूर्णतया स्पष्ट नहीं किए जा सकते। जब इन धार्मिक विषयों को धर्म की भाषा में शब्दों से प्रकट करते हैं और जिनसे हमें उनके विषय में कुछ ज्ञान होता है, उन्हें प्रतीक कहा जाता है। यह भी देखा जाता है कि धर्म के क्षेत्र में भाषा का प्रयोग प्रतीकात्मक होता है। कारण यही है कि धर्म में ईश्वर अतींद्रिय और नाम रूप से परे है, अतः उसे केवल प्रतीक के ही रूप में माना जा सकता है। जैसे धर्म में क्रॉस अथवा स्वास्तिक या त्रिशूल आदि को प्रतीक कहते हैं। इनसे धर्म के तत्संबंधी निर्दिष्ट वस्तु को समझा जाता है। धर्म के प्रतीक पर पाश्चात्य विचारकों में पाल तिलिख ने विशेष रूप से कार्य किया है। युंग ने भी जाति अचेतन के आद्य प्रतिभा के आधार पर प्रतीक की समस्या पर विचार किया है। युंग ने भी जाति अचेतन के आद्य प्रतिभा के आधार पर प्रतीक की समस्या पर विचार किया है। पाल तिलिख का तो यहाँ तक कहना है कि धर्म की भाषा प्रतीकात्मक होती है, क्योंकि इसी के द्वारा ही परम अतींद्रिय सत्ता का भान हो सकता है। केवल इसी से आध्यात्मिक सत्ता की अव्यक्ति भी संभव है। अगला शीर्षक है प्रतीक का स्वरूप एवं अर्थ। प्रतीक के स्वरूप पर विचार करने के लिए प्रतीक और चिन्ह का भेद करना आवश्यक है। वैसे तो प्रतीक और चिन्ह में कोई विभाजक रेखा स्पष्टतः नहीं खींची जा सकती, परंतु धर्म के प्रतीक को चिन्ह से सरलता पूर्वक अलग किया जा सकता है। चिन्ह का उपयोग गणित तथा तर्कशास्त्र में पाया जाता है। इनसे तर्क और अनुमान में सहायता मिलती है। इनकी रचना रूढ़िगत और परंपरा मूलक होती है और इनमें परिवर्तन सहज नहीं होता, परंतु प्रतीक प्रतिनिधि का काम करते हैं, अर्थात धार्मिक प्रतीक प्रतीक्य की ओर संकेत करते हैं। यद्यपि चिन्ह और प्रतीक दोनों संकेत का काम करते हैं, परंतु चिन्ह प्रतीक नहीं हो सकते, क्योंकि चिन्हों से केवल संकेत मात्र होता है, परंतु प्रतीक से संकेत के अलावा प्रतीक्य का भान भी होता है। पृष्ठ संख्या 294। धार्मिक व्यक्ति प्रतीकों द्वारा प्रतीक्य में भाग ग्रहण करता है, एकाकारता का अनुभव करता है। पाल तिलिख ने चिन्ह और प्रतीक को भिन्न बताते हुए प्रतीक की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई हैं, जिनसे प्रतीक का अर्थ प्रकट हो जाता है। इसमें पहला बिंदु है, प्रतीक लाक्षणिक होते हैं। प्रतीक का प्रयोग वही होता है जहां हम किसी वस्तु को सामान्य भाषा या शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते। ऐसी वस्तु अतींद्रिय और विश्वातीत होती है। साधारण वस्तु जैसे पुस्तक, कलम और कुर्सी के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। प्रतीक प्रतीक्य की ओर संकेत करते हैं। जैसे ईसाई धर्म में क्रॉस का प्रतीक ईसा की मृत्यु, शक्ति, क्षमा आदि का प्रतीक है। तिलिख के शब्दों में प्रतीकों से परम असीम सत्ता की ओर निर्देश मिलता है। दूसरा है भाग ग्रहण। प्रतीक उस सत्ता में भाग ग्रहण करता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। जैसे भारत का तिरंगा झंडा देश का प्रतीक है और वह देश के आदर्श, गौरव आदि में भाग लेता है। अतः झंडे का अपमान देश का अपमान कहा जाता है। यहाँ यह निर्देश करना आवश्यक है कि एक प्रतीक दूसरे के लिए यदि वह उसमें भाग ग्रहण नहीं करता तो चिन्ह मात्र रह जाएगा। जैसे गैर ईसाई के लिए क्रॉस एक चिन्ह मात्र होगा, परंतु ईसाई के लिए प्रतीक होगा, क्योंकि उसमें ईसाई भक्त भाग ग्रहण करता है, उससे वह अतीत सत्ता का भान करता है। इसीलिए चित्र धर्म के क्षेत्र में चाहे पहले भले ही प्रतीक का काम करे, परंतु बाद में चलकर वही चिन्ह मात्र रह जाते हैं। अब बिंदु तीसरा है, स्वनिर्मित। प्रतीक किसी के द्वारा रचे नहीं जाते और न तो किसी की इच्छा पर निर्भर करते हैं। इनका उद्भव, विकास तथा विनाश जात के चेतन अचेतन प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। इनका बीज सामूहिक अवचेतन में सन्निहित रहता है। इसी के फलस्वरूप समाज इन प्रतीकों को स्वीकार कर लेता है। इसके विपरीत चिन्ह परंपरागत माने जाते हैं, इसीलिए चिन्हों का अर्थ बदलता रहता है। बिंदु चौथा है, वस्तुनिष्ठता। पाल तिलिख का कहना है कि प्रतीक में अतीत और अदृश्य तथा संपूर्ण आदर्श दृष्टिगत होते हैं। धार्मिक व्यक्ति प्रतीकों से अभिभूत होकर उन आदर्शों और अदृश्य सत्ता में अस्पष्टतः भाग लेता है। इसी अर्थ में प्रतीकों में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। दूसरे शब्दों में सत्य का ढका रूप खुलकर सामने आ जाता है। कला तथा साहित्य में प्रतीकों का उपयोग इसीलिए होता है कि उनसे संवेदनशील व्यक्ति सौंदर्य का आस्वादन करने लगता है। चिन्हों में यह विशेषता वर्तमान नहीं रहती। पांचवा है ज्ञाता गे से परे का भान। कुछ प्रतीक तो ऐसे होते हैं जिनके द्वारा निर्दिष्ट वस्तु का ज्ञान उसकी अनुपस्थिति में भी हो जाता है, जैसे राजा को बिना उनके झंडे के भी जान लिया जा सकता है। परंतु कला और धर्म के ऐसे प्रतीक होते हैं जो ज्ञाता और गेय से परे सत्ता का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। अब बिंदु छठवां है विकास और ह्रास। प्रतीकों द्वारा मनुष्य अनुप्रेरित होता है, इनसे मानव संस्कृति विकसित होती है। यह भी देखा जाता है कि प्रतीकों से सदैव मनुष्य प्रेरित ही नहीं विनाशोन्मुख भी होता है। धर्म में अनेक संघर्ष और कुकृत्य अथवा खून खराबी संभवतः इनके ही परिणाम कहे जा सकते हैं। फलतः प्रतीकों का विकास और नाश भी देखा जाता है। संस्कृति की सृजनात्मक तथा ह्रासोन्मुखता को इसका कारण कहा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 295, शीर्षक है युंग के अनुसार प्रतीक। युंग के अनुसार जातिगत अचेतन में आद्य प्रतिभा होती है, वह तो केवल संभावना के रूप में ही होती है, परंतु वास्तविकता के रूप में प्रतीक का रूप धारण करती है। युंग प्रतीक को लक्षण तथा मानसिक ग्रंथियों से अलग करते हैं। युंग का कथन है कि चिन्ह तो केवल रूढ़िगत निश्चित और निर्धारित अर्थ ही प्रकट करते हैं, जैसे वस्तुओं के नाम साधारण चिन्ह मात्र हैं, परंतु प्रतीक का अर्थ निश्चित न होकर अस्पष्ट तथा अनिश्चित होता है और उसका संकेत भावनाओं की ओर होता है। वह भी स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति नहीं हो पाता। उनके अनुसार ईश्वर या परमेश्वर या परम पिता इत्यादि प्रतीक ही हैं जिनको हम पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं कर पाते। लक्षण से भेद स्पष्ट करते हुए युंग कहते हैं कि लक्षण दमित अनुभूति है, परंतु प्रतीक जात या सामूहिक अचेतन में निहित आद्य प्रतिभा के वास्तविक रूप हैं। लक्षण का संबंध अतीत जीवन से होता है, जबकि प्रतीक का संबंध भविष्य जीवन से होता है। इसकी सिद्धि युंग ने पुराणों के आधार पर की है। बिना प्रतीक के धर्म की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को नहीं समझा जा सकता। अगला शीर्षक है प्रतीकों के प्रकार। पाल तिलिख ने तीन प्रकार के प्रतीकों को माना है। पहला प्रतीक परम सत्ता है, दूसरा सगुण ईश्वर और तीसरा ऐतिहासिक धार्मिक महापुरुष जो ईश्वर अवतार की श्रेणी में आते हैं, जैसे बुद्ध, ईसा, मोहम्मद आदि। कुछ संकेतात्मक प्रतीक हैं, जैसे धार्मिक क्रिया विधान, तारे के साथ दूज का चांद या शंख, चक्र, त्रिशूल आदि। तिलिख ने प्रतीक के विषय में कुछ शर्तों को भी निर्धारित किया है जिनका होना नितांत आवश्यक है। उनका कहना है कि प्रतीक कभी कभी ईश्वर का रूप धारण कर लेते हैं। ईश्वरवादी धर्मों में यह देखा भी जाता है। पूजा तथा न्याय के प्रतीक के रूप में ऐसा पाया जाता है। वास्तव में प्रतीक ऐसा होना चाहिए जो हमें विश्वातीत सत्ता का भान कराए। प्रतीक सीमित नहीं होना चाहिए, अन्यथा वही परम सत्ता मान ली जाएगी और मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो जाएगा। अतः प्रतीक वही उपयुक्त कहा जा सकता है जो परम सत्ता तक ले जाने की क्षमता रखता हो, जो सर्वोच्च दृष्टि रखे तथा जो मूर्ति पूजा में बदल न जाए। परंतु पाल तिलिह की ये शर्तें संपूर्ण रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं कही जा सकती। ईश्वरवादी धर्मों में यह देखा जाता है कि प्रतीकों के आधार पर परम सत्ता का उद्रेक होता है। भावनाएं जगती हैं और धार्मिक व्यक्ति काल और स्थान से संबद्ध होकर अपने गंतव्य लक्ष्य तक पहुंचता है। तीर्थ स्थान और राम, कृष्ण, बुद्ध और ईसा पूज्य प्रतीक बनकर परम सत्ता का ही तो भान कराते हैं। निरुपाधिक विश्वातीत सत्ता तक पहुँचने का यह सुगम उपाय है। अगला शीर्षक है धर्म में प्रतीकवाद का महत्व। जिस प्रकार हम दैनिक जीवन में साधारण रूप से लोगों से बातचीत करते समय उनके हाव भाव, आसनों और भाव भंगिमा से या विचारों के अन्य प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं और उनके कथनों, मनोवृत्तियों तथा दृष्टिकोणों में सहभागिता करते हैं या उसके साथ हो जाते हैं, उसी प्रकार धर्म में भी अनेक प्रकार से की गई क्रियाओं, पूजा विधानों, स्तुतियों से भी धर्म में प्रविष्ट होने और उसके लक्ष्य को आत्मसात करने में पूर्ण सहायता मिलती है। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का महत्व निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। नेताओं के भाषण रेडियो पर भी सुने जा सकते हैं, परंतु वही भाषण जब नेता के मुख से साक्षात रूप में सुना जाता है तो उसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, हाव भाव तथा विशिष्ट शैली का और ही महत्व होता है। पृष्ठ संख्या 296। वह जनता पर मनोवैज्ञानिक ढंग से जादू का सा प्रभाव डालता है, जिसके फलस्वरूप सारी जनता नेता की मनोवृत्ति के साथ हो जाती है और वह चाहे जो कार्य उस समय करा लेता है। इससे सिद्ध होता है कि जटिल भाव और परिस्थिति की प्रतीकों द्वारा सरलता से अभिव्यक्ति होती है। धर्म में प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान निम्नलिखित रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें पहला है सामूहिक चेतना पर प्रतीकों का प्रभाव। धर्म मनोविज्ञान के लेखक सेल्वी का कथन है कि प्रतीकों का महत्व धर्म तथा अन्य स्थलों पर इस रूप में आंका जा सकता है कि प्रतीकों से सामूहिक चेतना को कार्य करने का विशिष्ट अवसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रतीकवाद का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। दूसरा बिंदु है प्रतीकों द्वारा भावना और विश्वास को शक्ति तथा उद्दीपन मिलती है। धर्म की प्रतीकात्मक क्रिया विधियों तथा प्रतीकात्मक शब्दों के उच्चारण से भावनाओं और विश्वासों को उद्दीपन तथा शक्ति मिलती है। विशेष रूप से ऐसा तब होता है जब प्रतीकात्मक क्रिया विधियाँ समूह में की जाती हैं। तीसरा है प्रतीकों का गहन मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सस्वर ढंग से किया गया ईश्वर भजन तथा समूह में अभिव्यक्त किया गया विश्वास निश्चित रूप से गहन मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। चौथा है प्रतीक धार्मिक भक्त के स्रोत की उत्पत्ति करते हैं तथा नवीनता प्रदान करते हैं। यदि प्रतीकों का अर्थ परंपरा तथा रीति रिवाज की पृष्ठभूमि में समझा जाए तो केवल शब्दों के उच्चारण तथा पवित्र स्थान पर की गई पूजा मात्र से ही भक्त के स्रोत की उत्पत्ति हो जाती है और उनमें नवीनता भी आ जाती है। बिंदु पांचवा है प्रतीकों से ध्यान भावना और मनोवृत्ति की उत्पत्ति। प्रतीकों का धार्मिक महत्व इस अर्थ में भी है कि क्रियाओं चिन्हों भाव भंगिमा तथा विशेष प्रकार के पहनावा का निश्चित धार्मिक महत्व होता है। इनसे मनुष्य में धार्मिक अवधान भावना तथा मनोवृत्ति पैदा होती है जो धर्म तथा पूजा के निर्माण में आवश्यक है। अंत में इतना कहना आवश्यक है कि इन धार्मिक प्रतीकों का कोई महत्व नहीं होगा यदि व्यक्ति इन प्रतीकों से पूर्व परिचित नहीं होगा। एक धर्मानुयायी दूसरे धर्म के प्रतीकों के प्रति उत्सुक तो अवश्य होगा परंतु अर्थ बोध के अभाव में श्रद्धा और पूजा का भाव जागृत नहीं होगा। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि धार्मिक जीवन में प्रतीकों का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि इनका बहिष्कार संभव नहीं कहा जा सकता। धर्म के इतिहास से यह भी प्रकट होता है कि जो धर्म जितना ही विकसित समृद्ध एवं सजीव होगा उस धर्म में उतने ही सजीव और विकसित प्रतीकों का होना अनिवार्य है। अध्याय 18 समाप्त।